بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے. اب یہ جو مبارک جملہ ہے کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے, اس کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, شیطان انسان کے دل کے اندر اس طرح کی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے آنا یعنی شیطان کے مدد کرنے والے, شیطان کے چیلے جو عام متن انسانوں سے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں سے بھی ہوتے ہیں, تو شیطان کے جو چیلے ہیں جو انسانوں میں سے ہیں وہ آپ تمہارے پاس آتے ہیں. آ کر کے وہ کیا کہتے ہیں؟ من خلق قضا, فلانی چیز کس نے پیدا کی؟ مثلاً پوچھتا ہے آسمان کس نے پیدا کیا؟ من خلق قضا, فلانی چیز کس نے پیدا کی؟ یعنی زمین کس نے پیدا کی؟ یعنی پہلے ایسے سوال کرے گا جس سوال کا جواب آسان ہے, معروف ہے اور متعین ہے. پہلے ایسے سوال کرے گا شیطان, اس کے بعد ایک دم پلٹ کر کے خطرناک سوال کرے گا. من خلق ربک, آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا؟ یہ ہے شیطان کا گمراہ کرنے کا طریقہ, کہ شیطان اس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. فَإِذَا بَلَغَهُ, تم میں سے کسی کے پاس جب شیطان پہنچے, ضرر پہنچانے کے لیے پہنچے, نقصان پہنچانے کے لیے پہنچے, فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ, وہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینا چاہیے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لینا چاہیے. وَلْيَنْتَهِ, اور رک جاوے اس طرح کے سوال جواب کے چکروں سے, اور رک جاوے اس طرح کے سوال جواب کے چکروں سے. دیکھیے, شیطان انسان کو ذہنی فکری غلطیوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے, ذہنی عقیدوں کو بگاڑنا چاہتا ہے, فکر کے اعتبار سے غلط طریقے کی طرف لے جانا چاہتا ہے. اسی لیے شیطان آ کر اس طرح کے سوالات کرتا ہے. اولاً وہ معروف سوال کرے گا, جواب متعین ہے ایسا سوال کرے گا, جس کا جواب آسان ہے ایسا سوال کرے گا, اور پھر ایک دم راستہ بدل کر الٹا سوال کر کے آدمی کو پھنسا دے گا. یہ شیطان کا نہایت خطرناک فندہ ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا, ہمارے یہاں بچے کھیل کھیلتے ہیں. ایک بچہ دوسرے بچے کو پوچھتا ہے, چڑیا چلی؟ تو وہ جواب دے گا, اڑے. کبوتر؟ کہے گا, اڑے. پھر وہ ایک دم پوچھے گا, ہرن؟ تو چونکہ وہ سوال کرتے کرتے اڑے اڑے بولتا جاتا ہے, तो हिरण के आगे भी बोलेगा उड़े, तो फिर उसको एक तमाशा मारेगा कि गलत जवाब दिया तूने। इस तरीके से ये शैतानी चाल है कि शैतान लोगों को इस तरह गलत अकीदों में गुमराह करने के लिए ऐसे सवाल करता है। पहले पूछेगा तुझे किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तेरे बाप को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। तेरी माँ को किसने पैदा किया? अल्लाह ने। अरे अल्लाह को किसने पैदा किया? अब इंसान एकदम सोच में पड़ेगा कि मेरे बाप का खालिक कोई है, मेरी माँ का खालिक कोई है, मेरा खालिक कोई है, तो अल्लाह का भी कोई खालिक होए। ये हैं उसके गुमराह करने के चक्कर शैतान को। इसीलिए हदीस शरीफ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेहतरीन इलाज बतलाया कि अगर शैतान किसी को इस तरह के चक्कर में डालने के लिए पहुंचे तो अल्लाह से पनाह मांगो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ातिश शयातीन औज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून। ऐसा पढ़ लो और शैतान के सवाल जवाब के चक्कर में मत पड़ो, और इस तरह के सवाल जवाब के चक्कर से रुक जाओ। दरअसल इसका एक इलाज ये भी है कि आदमी दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जे हो जावे, जिस ख्याल जिस फिकर जिस सोच में चल रहा है उसको छोड़ करके दूसरी फिकर दूसरे ख्याल की तरफ मुतवज्जे हो जावे। ये भी बहुत ज़रूरी है। मसलन बैठा हुआ है और इस तरह के ख्यालात आने शुरू हो जावे तो खड़ा हो जावे, खड़े खड़े ऐसे ख्यालात आवे चलने लगे, चलते चलते ऐसे ख्यालात आवे दौड़ने लगे, हालत बदल देवे आदमी, ये भी इस तरह के गंदे ख्यालात का एक इलाज है। इसीलिए कि फ़लसफे का एक ज़ाब्ता है, तसलसल बातिल और महाल है, तसलसल बातिल और महाल है, यानी एक चीज़ के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, ये तसलसल कहीं ना कहीं जाकर के तो रुक ही जाता है। तसलसल जारी रहे ये बातिल और महाल है। इसलिए इंसान मुसलसल यही जवाब देता रहे तो ये तो मुमकिन नहीं, कहीं ना कहीं जाकर उसको रुकना ही पड़ेगा। आप यूं कहे कि मैं मुसलसल पढ़ता ही रहता हूँ, पढ़ता ही रहता हूँ, यानी सुबह उठता हूँ तब से पढ़ना शुरू करता हूँ, फजर पहले मुताला, फजर पढ़ के मुताला, पहले घंटे में सबक, दूसरे घंटे में सबक, तीसरे में सबक, वक्फे में सबक, फिर चौथे में सबक, पाँचवें में सबक, फिर कब तक तसलसल रहेगा? अब तो रुकना पड़ेगा ना। अकल याकुलू की गर्दान करनी है, शरीब यश रबु की गर्दान करनी है, फिर नाम या नामु करना है, तो उसके लिए रुकना पड़ेगा। तसलसल महाल है, कहीं न कहीं जाकर के तो आदमी को रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए शैतान इस तरह के चक्करों में डाले तो उसका बेहतरीन इलाज ये है कि आदमी रुक जावे और अपनी हालत को बदल देवे, दूसरी चीज की तरफ मुतवज्जे हो जावे, तो शैतान के ऐसे चक्करों से बच जाएगा। तो ये रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लाए हैं कि शैतान इंसान को गलत अकीदे गलत सोच में मुब्तला करने के लिए इस तरह के गंदे वसवसे ख्यालात जहन के अंदर डालता है, और उसी को लोग वसाविस से ताबीर करते हैं कि वसाविस की कसरत रहती है। तो एक उसूली बात जहन के अंदर रखो कि हदीस शरीफ में जो उसका पहला इलाज बतलाया गया कि अल्लाह से हिफाजत चाहना, और उसके लिए ये तीन दुआ बहुत मुजर्रब है, औज़ु बिल्ला रब्बी औज़ु बिका, ये मुजर्रब तरीन दुआ है शैतान से पना मांगने की। वसवसे का दूसरा इलाज है किसी जगह पर जाकर रुक जाना, ये दूसरा इलाज है। तीसरी चीज़ है आदमी अपनी हैयत अपनी काम अपनी हालत को बदल देवे। जैसे कि आम मतन ये वसावी साते हैं फारिग बैठे रहने वाले को, तो आदमी फारिग बैठा और वसवसे आना शुरू करे, कुछ न कुछ सही काम चालू कर दो। मसलन आप फारिग बैठे हो, वसवसे आए तो मुताला शुरू कर दो, तकरार शुरू कर दो, मुजाकरा इल्मी शुरू कर दो, या एक जो है बैठे फारिग वसवसे आ रहा है तो जाकर के पाव भाजी खाना चालू कर दो, वसवसे आ रहे हैं तो जाकर के जो है आप दौड़ो, गार्डन में घूमो, कुछ काम करो। फारिग बैठे रहोगे तो ये वसवसे आएंगे, ये किसका जामे इलाज है। और जो है एक रिवायत में ये आता है, गालिबन हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला नुमा की रिवायत है कि हुवल अव्वल वल आखिर वज़्ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ली शैइन अलीम। वसवसे के वक्त पर ये आयत की तिलावत करें तो वसवसा दफा हो जाएगा। इसी तरह मुआवज़तैन पढ़ ले, उससे भी वसवसा दफा हो जाएगा। आजकल लोग बहुत मुब्तला है वसाविस की बीमारी के अंदर। चलो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु अन्हुम इरशाद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमदान का महीना दाखिल होता है तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। बाज़ रिवायत में है अबवाबुल जन्नती, कि रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अब इसको समझो कि जन्नत के दरवाजे खोले जाने का मतलब क्या है। नंबर एक, अल्लाह ताला की मजीद रहमत, अल्लाह ताला की कसरत से रहमत, अल्लाह ताला की मुतवातिर और मुसलसल रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो जाती है। यह है दरवाजे जन्नत के खुलने का मतलब। मजीद रहमत, मुतवातिर रहमत, कसरत से रहमत बंदों की तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो जाती है। दूसरा मतलब, नेक आमाल जो जन्नत के दाखले का सबब है उसकी बंदों को तौफीक होती है। नेक आमाल जो जन्नत में दाखले का सबब है उसकी बंदों को बहुत ज़्यादा तौफीक होती है। इसीलिए आप देखिए कि रमज़ान के महीने के अंदर नेक आमाल की तौफीक बढ़ जाती है, ज़ायद हो जाती है। जो तौफीक साल भर नहीं होती वो तौफीक रमज़ान के महीने में हो जाती है। वगुल्लिकत अबवाबु जहन्नम, नंबर तीन, तीसरा महीना, तीसरा मतलब समझो, जन्नत के दरवाजे खुल जाने का तीसरा मतलब ये है कि रमज़ान के महीने को तमाम महीनों पर शर्फ और फजीलत है, उस बात का इजहार करना है कि साल के 12 महीनों में 11 महीनों पर रमज़ान के महीने को एक ख़ास किस्म की फजीलत और शराफत हासिल है। उस बात को ताबीर किया गया जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिए जाने से। जैसे कि कहा जाए कि जनाब आली तशरीफ ला रहे हैं, तमाम दरवाज़े खोल दिए जाएं। अरे भाई जनाबे आली इतने मोटे हैं कि तमाम दरवाजे खोलने पड़ेंगे, वो तो बेचारे सिंगल बॉडी आदमी हैं, छोटी सी खिड़की से भी आ जाएंगे। नहीं, एक शर्फ और फजीलत का बयान कि जनाबे आली का मकाम तमाम पजामा खाली के ऊपर ज़्यादा है, इसीलिए तमाम दरवाजे खोल दिए जाएं। ये हैं बयान शर्फ, बयान फजीलत। वगुल्लिकत अबवाब जहन्नम, और जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। क्या मतलब जहन्नम के दरवाजे बंद होने का? नंबर एक, रोजदारों के नुफूस, रोजदारों की तबीयतें गुनाह करने से बचा ली जाती है, इसलिए कि गुनाह जहन्नम में ले जाने वाले, गुनाह जहन्नम में ले जाने का जरिया, तो जो चीज़ जहन्नम में ले जाने का जरिया बनती है उससे रोजदारों के नुफूस बचा लिए जाते हैं। दूसरा मतलब उसका ये लिया जाएगा कि वाकिअतन जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, वाकिअतन जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तो एक मतलब ये है कि भाई गुनाह करना, बुराई करना और जो है नाफरमानी करना, ये लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, खुसूसन रोज़दार लोगों को गुनाह करने से अल्लाह रोक देते हैं, उनकी तबीयतें गुनाह से रोक ली जाती है, इसलिए कि यही गुनाह जहन्नम के अंदर ले जाने का ज़रिया है। इसलिए फरमाया वगुल्लिकत अबवाब जहन्नम, जहन्नम में ले जाने वाले आमाल बंद कर दिए जाते हैं। वसुलसिलति शयातीन, और शयातीन को जंजीरों में, बेड़ियों में जकड़ दिया जाता है। शयातीन को बेड़ी में जकड़ा जाएगा हकीकतन, यानी मलाइका शरकश शयातीन को जंजीरों में बांध बांध करके जजीरों के ऊपर ले जा करके डाल देते हैं। नंबर दो, रमज़ान में वो इंसानों को गुमराह नहीं कर पाते, इनकी गुमराही, उनकी शरारत कम से कम कर दी जाती है, उसको ताबीर कर दिया गया शैतानों को बेड़ियों में जकड़ दिए जाने से। जी किसी तरह भी किसी रिवायत में शैतान अलैहि मा अलैहि का तस्किरा है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उसको ला रहे हैं और जो है बतलाते हैं कि शैतान के कामों में ये सब काम भी शामिल है। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा को सईद इब्ने जुबेर ने कहा कि हमको उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला उन्होंने बयान किया। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं कि हमको हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला उन्होंने बयान किया, क्योंकि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास सिगारे सहाबा में से हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना उन्होंने कम पाया, इसलिए वो ज़्यादातर अकाबिर सहाबा से रिवायत करते हैं। अन्नहु समिअ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकुल, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, इन्न मूसा काल लिफता, हजरत मूसा अलैहि सलाम ने अपने साथी यूशा इब्ने नून को कहा, आतिना गदाअना, हमारा नाश्ता खाना लाओ, भूख लगी। तो यूशा इब्ने नून कहने लगे, अरअयत, हजरत जी कल की बात मालूम है आपको, इज अवैना इला सखरा, जब हमने पड़ाव डाला था एक चट्टान के पास, जब हमने चट्टान के पास कल पड़ाव डाला था, जहां नहरे हयात थी, जहां हमने दोपहर में कल आराम किया था, फइन्नी नसीतुल हूत, तो खाई हुई मछली तो जिंदा होकर के दरिया में चली गई, और हजरत मैं आपको मछली का तस्किरा करना ही भूल गया, फइन्नी नसीतुल हूत। अब इन्होंने कहा, वमा अंसानी हु इल्ला शैतानु अन अदकुरा, शैतान ने उसका तस्किरा करना मुझे भुला दिया, यानी ये शैतान ने शरारत की और मुझे भुला दिया कि मैं आपके सामने तस्किरा करूं कि वो मछली जिंदा होकर समंदर में चली गई। लिहाजा शैतान का एक काम ये है कि वो भुलाने का काम भी करता है। तो भुलक्कड़ होने के एक असबाब में शैतानी असरात का भी दखल होता है, उससे भी आदमी भुलक्कड़ बन जाता है। अन अज़कुरा वलम यजिद मूसा अन्नसब, और मूसा अलैहि सलाम ने थकान नहीं पाई, हत्ता जावज़ल मकान अल्लज़ी अमरहुल्लाहु बिह, यहाँ तक के मूसा अलैहि सलाम उस जगह से आगे बढ़ गए जिस जगह के बारे में अल्लाह ने उनको हुक्म दिया था, यानी जहाँ शेख खजिर की मुलाकात होने वाली थी, वहाँ तक चलते चलते तो मूसा अलैहिस्सलाम को थकान नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही अपनी मंजिल मकसूद से आगे बढ़े कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सफ़र में थकान हो गया। जी हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदी अल्लाहु ताला अन्हुमा वान्हुम वान्ना जमीआ कहते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर जानिबे मशरिक की तरफ इशारा फरमा रहे थे, यानी मिंबर पर खड़े थे, वास फरमा रहे हैं, और दाएं हाथ से दाएं जानिब इशारा कर रहे थे, और जानिबे मशरिक की तरफ इशारा कर रहे थे, दाएं हाथ से दाएं जानिब जानिबे मशरिक की तरफ इशारा फरमा रहे थे। फ़क़ाल, इशारा करते हुए क्या फरमाया, हा इधर की तरफ, इन्नल फितनत हा हुना, फितने इस तरफ से हैं, यहाँ हैं, फितने इस तरफ से हैं, फितने यहाँ हैं। क्या मतलब, यानी जानिबे मशरिक से फितने नमूदार होंगे, जानिबे मशरिक से फितने नमूदार होंगे, और जानिबे मशरिक ये फितनों के अड्डे की, फितनों का अड्डा है, फितनों की जगह है। हा इन्नल फितनत हा होना, देखो इस तरफ से फितना निकलेगा। बहुत से हजरात ने उससे दज्जाली फितने मुराद लिए हैं, کہ دجالی فتنے مراد ہے کہ مجانب مشرق سے دنیا کا آخری عظیم فتنہ دجال کا رونما ہوگا. حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب نور اللہ مرکدہ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہے مسیلمہ قذاب کا فتنہ, اس لیے کہ مدینہ سے جانب مشرق میں مسیلمہ قذاب کا مشرق میں مسیلمہ قذاب کا خاندان پڑتا ہے, گویا کہ اس کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا کہ میرے بعد میری نبوت خاتم, میں خاتم النبیین ہوں, لیکن ایک جھوٹے نبی کا جو فتنہ کھڑا ہوگا وہ اس جانب سے فتنہ رونما ہوگا. تو اس طرف مسیلمہ کی طرف سے آنے والے فتنے کی طرف اشارہ فرمایا. جی من حیث یطلع قرن الشیطان, جہاں سے شیطان کا قرن طلوع ہوتا ہے, یعنی شیطان کے پیروکار اس طرف سے برآمد ہوتے ہیں, شیطان کے چمچے, شیطان کے پیروکار اس طرف سے برآمد ہوا کرتے ہیں. جی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کی آمد ہوتی ہے, استجناح کے معنی ہیں غروب کے بعد رات کا چھا جانا, رات کا آ جانا, تو جب رات کی آمد ہوتی ہے, یا یوں جملہ فرمایا جنح اللیل جنح اللیل, یعنی استجناح باب استفعال کے بجائے مجرد سے جنح اللیل جنح اللیل, تو جب رات کی آمد ہوتی ہے فقفو صبیانکم, تو تم تمہارے بچے کو بچوں کو روک لو, تم تمہارے بچوں کو روک لو, یعنی بچوں کو گھر سے باہر ادھر ادھر نکلنے اور جانے اور گھومنے پھرنے سے روک لو, یعنی جیسے ہی مغرب ہو رات آوے تو بچوں کو ادھر ادھر جانے گھومنے پھرنے سے روک لو, گھر میں گھون دو ان کو, گھر کے اندر بند کر دو بچوں کو رات آتے ہی, یہ بہت ضروری ہے. آج کل لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے, بلکہ شام کے وقت گارڈنوں میں ندی کے کناروں پر سمندر کے کناروں پر گھومنے نکلیں گے تو غروب ہو رہا ہے پھر بھی گھومتے پھریں گے, حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی رات آئے بچوں کو روک لو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَ اِذٍ, اس وقت پر شیطان ادھر ادھر پھیلتے ہیں, یعنی اپنی پناہ گاہوں سے نکل نکل کر, قیام گاہوں سے نکل کر ادھر ادھر سب جگہ پھیل جاتے ہیں. رات کی تاریکی آتے ہی شیاطین مختلف جگہوں کے اوپر پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب جب شیاطین پھیلیں گے تو بچوں کے اوپر ان کے اثرات ہو جائیں گے اور بچوں کو شیطانی اثر لگ جائے گا, اور اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بچوں کے بدن کے اوپر عام طور پر گندگی ناپاکی لگی رہتی ہے, بچے پیشاب میں پاخانے میں دوسری گندگی میں احتیاط نہیں کرتے, ان کے بدن پر گندگی ناپاکی لگی رہتی ہے, और गंदगी नापाकी के लगने के साथ शैतान का असर बढ़ जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि शैतान के अंदर खुद खबासत है और बच्चों में भी नापाकी, तो दो गंदगी जमा हो गई, इसीलिए बच्चों के ऊपर उसका असर ज़्यादा हुआ करता है। दूसरी बात ये भी है कि बच्चे शैतानी असरात से हिफाजत के जो कलिमात है वो नहीं पढ़ते। अब बड़े लोग तो समझो नमाज के बाद मुआवज़तैन पढ़ेंगे, सुबह शाम के जो मुआवज़ात हदीस में आए वो पढ़ेंगे, लेकिन बच्चे ये मुआवज़ात नहीं पढ़ा करते, मुआवज़ात बच्चे नहीं पढ़ा करते, इसीलिए शैतान का असर उनको ज़्यादा हुआ करता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त के बारे में खुसूसी हुक्म दिया कि बच्चों को रोक लो, इनको इधर उधर जाने मत दो, घोन दो। वह अगलिक बाबा का और हर चीज का दरवाजा बंद कर दो। इसीलिए घरों में ये निज़ाम बनाने का, औरतों को कह देने का, बच्चे खेलते हो अजान से पहले मगरिब से पहले बुलाओ, सबको जमा कर लो। इसीलिए मदरसे में भी कानून है अजान से पहले सब मैदान से आके मस्जिद में बैठ जाओ, बाहर अजान असर के बाद खेल लें, अब अजान का वक्त आ गया सब मैदान से आ जाओ और जो है मस्जिद में बैठ जाओ, और घर के दरवाजे बंद कर देने के जो खुले हैं वो, और अल्लाह का नाम लेकर के दरवाज़ा बंद करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करो, और चिराग को बुझाओ, चिराग को बुझाओ। बीच में एक जुमला रह गया, फ़ाइदा ज़हब सा'अतु मिनल इशाई फ़खल्लूहुम, जब रात का एक हिस्सा गुजर जावे तो फिर बच्चों को छोड़ दो। यानी ग्रुप से पहले जो बच्चों को बंद कर दिया था, जब रात का एक वक्त गुजर जावे, मसलन ईशा आ गई, ईशा की नमाज हो गई, अब बच्चों को कहीं जाना आना हो तो फिर उनको छोड़ दो कि जावे वो, तो रात का एक हिस्सा गुजरने के बाद, यानी कि शफ़क़ अहमर डूब गया, रात का एक हिस्सा गुजर गया, अब बच्चों को खोल दो तो भाई कहीं ट्यूशन जाना हो, उस्ताद के यहाँ सबक याद करने जाना हो, या नानी के यहाँ खाने जाना हो तो वो जा सके, उनको खोल दो उनका दरवाज़ा रात का एक हिस्सा गुजरने के बाद। और रात के वक्त पर दरवाजे बंद करो तमाम चीज़ों के, अल्लाह का नाम लेकर के बंद करो। देखो जिस तरह इंसान में चोर होते हैं, शयातीन में भी चोर हुआ करते हैं, इसीलिए इंसान की चीज़ों की चोरी शयातीन करते हैं, पैसों की भी चोरी करते हैं, चीज़ों की भी चोरी करते हैं, इसीलिए अगर बिस्मिल्लाह पढ़ के दरवाज़ा बंद करेंगे तो शयातीन चोरी नहीं कर सकेंगे। वत्फी मिसबाह का चिराग भी बुझा दो, इसलिए कि चूहिया वो चिराग का तेल पीने की लालच में उसका फतीला डिवेट खींच कर इधर उधर ले जाएगी, और जलती डिवेट फतीला इधर उधर जाएगी तो पूरे घर में आग लग जाने का ख़तरा है, इसलिए चिराग बुझा दो और अल्लाह ताला का नाम पढ़ो। वह आओ की सिका का और अपने मशकीज़े का ढक्कन बंद कर दो, मशकीज़े का मुंह बांध दो और अल्लाह का नाम ले करके मुंह बंद करो, मशकीज़े का मुंह बंद करो, अल्लाह का नाम लेकर के बंद करो। यानी जितने भी पानी के बर्तन हैं, मशरूबात के बर्तन हैं, दूध वगैरह के बर्तन हैं, तमाम बर्तनों को ढाँक दो, खाने के पीने के बर्तन, फ्रीज, सब चीज़ें बंद कर दो और अल्लाह का नाम लेकर के बंद करो। व खम्मिर इना का अपने बर्तनों को ढाँक दो, और बर्तन को ढाँकते के वक्त पर भी उस पर अल्लाह ताला का नाम पढ़ लो। बर्तन ढाकते वक्त पर भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो और अल्लाह का नाम लेकर बर्तन को ढाँक दो। अगरचे कोई चीज उसके ऊपर अर्जन रख दो, कोई चीज उसके ऊपर अर्जन रख दो। देखो भाई, बर्तन है, मशकीजा है, मटका है, उसको ढांकने के लिए कोई चीज ना मिले तो लकड़ी वगैरह अर्जन बिस्मिल्लाह पढ़ के रख देने की, जैसे कि ये गिलास या तपेली, तो इस तरह कोई चीज यूं रख देने की अर्जन बिस्मिल्लाह पढ़ के, तो ये भी काफी है, इतना कर देना भी। गर्ज ये कि बर्तन है, मशकीजे हैं, मटके हैं, मकान के दरवाजे हैं, गाड़ी के दरवाजे, फ्रीज के दरवाजे, तमाम चीजें बिस्मिल्लाह पढ़ के बंद कर देने की। अल्लाह का नाम लेने की वजह से शैतान से हिफाजत हो जाएगी, वबाई बीमारियों से हिफाजत हो जाएगी, हशरातुल अर्द से हिफाजत हो जाएगी, हशरातुल फिजा में उड़ने वाले जरासीम से अल्लाह सुबहानहु व ताला हिफाजत फरमा लेंगे। इसीलिए हर चीज ढांका करो, बिस्मिल्लाह पढ़ के ढांका करो, इसका एहतमाम करना चाहिए। अब देखिए, कलाम नबुवत तो बलागत से भरा हुआ होता है। अब अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम चीजों को बयान करके अखीर में एक मर्तबा फरमा देते वस्कुर इस्मल्लाह, तो भी काफी होता है। लेकिन हर चीज को जिक्र करके हर चीज के बाद वस्कुर इस्मल्लाह का तस्केरा आ रहा है। वगलिक बाबा का वस्कुर इस्मल्लाह, वतफी मिसबाह का वस्कुर इस्मल्लाह, वाओ की सिकाह का वस्कुर इस्मल्लाह, वखम्मिर इना का वस्कुर इस्मल्लाह। इससे अहमियत का अंदाजा लगाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर हर चीज को बयान करके अलग अलग हुक्म दिया कि हर चीज को ढांकते बंद करते वक्त पर बिस्मिल्लाह का एहतमाम करो, तो जो है हर शर से, शयातीन से हिफाजत हो जाएगी। इसीलिए ये बहुत मुजर्रब चीज है, इसका एहतमाम घरों में भी करना चाहिए। और पहले भी आपको अमल बतलाया था, ये तो नबवी अमल है। या माशरल जिन्न वल इंसी इनस्ततातुम अंतनफुजु मिन अक्तारिस समावाति वल अर्दि फनफुजु, ये आयत लिख कर के कबाट के दरवाजे पर चिपका देने की, पूरे अदब और एहतराम के साथ। तो शयातीन और जिन की चोरी से हिफाजत हो जाती है, ये भी एक मुजर्रब अमल है। वहाँ सहारनपुर में मैंने देखा था, हजरत शेख जकरिया साहब नवरल्लाहु मरकदहु के घराने में, कच्चे घर में कई चीज़ों के ऊपर ये आयत लिखी हुई थी। तो हजरत के नवासे से मैंने पूछा तो उन्होंने बतलाया कि ये नाने अब्बा ने, यानी हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह का ये अमल है कि भाई शयातीन जिन वगैरह की चोरी, इंसानों की चोरी से बचने के लिए ये आयत लिख करके चिपका दी जावे। चलो یہ روایت حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، میں آئی آپ کو رات کے وقت پر ملاقات کے لیے۔ تو اعتکاف کے اندر اہل خانہ ملنے کے لیے آ سکتے ہیں، اس کا جواز ہے، ممانعت ہے۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، جماع کی ممانعت ہے، ملاقات کی ممانعت نہیں ہے۔ دیگر امہات المؤمنین بھی ملاقات کے لیے وہاں آتی تھی، حضرت صفیہ بھی آئی۔ دیر رات گئے ہوئے، فحدثته، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی، ثم قمت، پھر میں اٹھی، یعنی جانے کے واسطے کہ اب میں گھر جاؤں، فانقلبت، تو میں واپس جانے لگی، فقام معی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ کھڑے ہوئے، حضور میرے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ لِيَقْلِبَنِي، تاکہ مجھ کو میری منزل تک پہنچا دے وے، تاکہ مجھ کو میرے گھر تک پہنچا دے وے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کی حدود سے باہر نہیں جانا ہے۔ مثلا مسجد ہے تو اس جانب میں حضرت صفیہ کا گھر ہے، تو اس جانب کے اندر جہاں آخری حد پڑتی ہے وہاں تک پہنچا دے وے، اس جانب ہے تو وہاں مسجد کی جو آخری حد ہے وہاں تک پہنچا دے رہے ہو۔ مدینہ چھوٹا سا تو تھا، مسجد نبوی تھوڑی وسیع تھی، تو کہا کہ دور تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ وَقَانَ مَسْكَنُهَا فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، اور اس وقت پر حضرت صفیہ کا قیام اسامہ ابن زید کے گھر میں تھا، یعنی اس زمانے میں ان کی رہائش حضرت اسامہ ابن زید والے مکان کے اندر تھی۔ اب حضور ان کو پہنچانے کے لیے آگے چلے، ظاہر ہے کہ انہوں نے چادر اوڑھ رکھی ہے حضرت صفیہ نے، یدنین علیہن من جلابی بہن، چادر اوڑھ رکھی ہے، اور حضور ان کو وہاں تک پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، انصار کے دو آدمی وہاں سے گزرے، دو انصاری صحابی کا گزر وہاں سے ہوا۔ دونوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو تیز چلنے لگے، تیز چلنے لگے۔ یہ طبعی چیز ہے، مثلا یہ کہ آپ بازار میں گئے سفر جن لینے کے لیے، تو وہاں استاد خالہ جان کے ساتھ تھے، تو آپ تیزی سے نکل آئیں گے کہ بھائی ایک طرح کی حیا محسوس ہوتی ہے اس طریقے سے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی عورت کے ساتھ دیکھا तो ये दोनों अंसारी सहाबी तेज निकले। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आवाज दी, अला रिसलिकुमा। क्या मतलब? यानी जरा तुम्हारी स्पीड कम करो, क्यों तुम बहुत फास्ट फास्ट चले, जरा रुक जाओ, पहले जैसे इत्मीनान से चलते थे ऐसे चलो, क्यों मुझे देखकर स्पीड बढ़ा दी तुम लोगों ने, रुको, आम आदत पर चलो। फिर क्या कहा हुजूर ने, ये औरत जो है ना मेरे साथ, सफिया बिनते हुए ही है, मेरी बीवी है, ये कहा हुजूर ने। देखिए कितनी बड़ी बात है, क्यों फरमाया? फकाला सुबहान अल्लाह। वो दोनों अंसारी साहबी कहने लगे, सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह। क्या मतलब सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह का? ए अल्लाह के रसूल, क्या हम आपको किसी नामुनासिब चीज की तोहमत दे सकते हैं? क्या आप ये वजाहत फरमा रहे हैं कि मेरी बेटी बीवी सफिया है? क्या हम आपको किसी गलत चीज की तोहमत दे सकते हैं? क्या आप ये वजाहत फरमा रहे हैं? दूसरा मतलब ये है कि हुजूर ने जो वजाहत फरमाई उस पर इन दोनों सहाबी को ताज्जुब हुआ, इसलिए बतौर ताज्जुब के उन्होंने कहा सुबहान अल्लाह या रसूल अल्लाह। यानी हमारे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि हम हुजूर के बारे में कुछ सोचे, और हुजूर ने क्यों ऐसा कहा होगा, ये ताज्जुब हुआ इन दोनों सहाबी को। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल बात फरमाई कि शैतान इंसान में खून की तरह चलता है, खून के चलनों की जगहों पर चलता है। यानी जिस तरह रगों के अंदर खून चलता है और ये रगें पूरे बदन में फैली हुई है, इसी तरीके से शैतान भी खून के साथ साथ खून की नालियों में, खून की रगों के अंदर, पूरे बदन के अंदर चलता है। और मुझे ये डर लगा कि शैतान तुम दोनों के दिलों के अंदर कोई बुरी बात डाले या कोई चीज तुम्हारे दिल में डाल देवे। कितना बड़ा एहतियात। अब देखिए, अगर शैतान किसी सहाबी के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक कोई गलत बात डाले तो उस उम्मती का तो ईमान बर्बाद हो जाएगा, ईमान तबाह हो जाएगा। नबी के बारे में कोई गलत चीज आ गई तो शैतान गंदे वसवसे डालने में बहुत तेज है, बहुत तर्रार है। अगर कोई गलत बात डाल दी कि हुजूर किसके साथ जा रहे होंगे अभी रात में, कौन औरत होगी, बस उम्मती की ईमान की बर्बादी हो गई, उम्मती की ईमान की तबाही हो गई। इसलिए का मैंने वजाहत से बतला दिया कि ये मेरी बीवी है। दूसरी बात यह है कि शैतान के मजरत दम का मतलब क्या है। नंबर एक, बहुत से शुर्राह ने इसको जाहिर पर महमूल किया है कि जिस तरह पूरे बदन के अंदर रग रग नस नस में खून चलता है, शैतान बदमाश भी खून के साथ मिल करके पूरे बदन के अंदर गंदे वसवसे डालता है। नंबर दो, बादशुर्रा फरमाते हैं कि खून के मजरे में चलने का मतलब है शैतान के वसवसों की कसरत, कि कसीरुल वसाविस है शैतान। नंबर तीन, एक बारीक मतलब समझो, शैतान बदन के अंदर जो लतीफ और बारीक मसामात है उसके अंदर वसवसे डालता है, और लतीफ और बारीक मसामात में वसवसे डालकर कल्ब तक, दिल तक वो गंदे वसवसों को पहुंचाने की कोशिश करता है। देखिए, जो चीज लतीफ और बारीक होती है ना, वो बहुत तेजी से असर करती है, जैसे कि धुआं, जैसे कि बुखारात, जैसे कि हवा, ये लतीफ और बारीक चीज है। अब देखो, खुशबू बदबू कैसी लतीफ चीज है, और हमारे नाक के जरिए फौरन दिमाग तक पहुंच जाएगी और फौरन असर करेगी। खुशबू का असर, बदबू का असर फौरी तौर पर आदमी को हुआ करता है। इसी तरीके से इंजेक्शन के इंजेक्शन लगाओ तो उसका असर भी बहुत तेजी से हुआ करता है और इंसान को असर पैदा होता है। तो गोया सुर अते तासीर से ये किनाया है। चौथी तौजी क्या करेंगे, सुर अते तासीर से किनाया कि शैतान बहुत तेजी से इंसान के ऊपर गलत असर डाल करके इंसान को गुमराह कर देता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़े फरमा दी। इससे ये मालूम हुआ कि जिस बात से लोगों को गलत फहमी पैदा होने का खतरा हो उसकी वजाहत कर देनी चाहिए ताकि लोग जो है गलत ख्यालात में मुब्तला न हो।